ओम शांति। ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी की पुस्तक पुरुषोत्तम संगम युग से उनके कुछ अनुभव।
So some more experiences from Ramesh Bhai's book, The Elevated Confluence Age.
पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने धन को सफल करने की युक्तियाँ।
So how to make good use of your wealth on the confluence age?
परमपिता शिव परमात्मा ने हम बच्चों को समय का ज्ञान दिया है।
So the Supreme Father, Supreme Soul has given us children the knowledge of time.
और भविष्य के लिए उत्कृष्ट तैयारियां करने के लिए युक्तियां भी बताई हैं।
And Baba has also given us methods on how to do elevated preparation for the end.
परंतु मेरा अनुभव यह है, हम वर्तमान काल को सफल नहीं करते।
But my experience is that we don't make full use of the present time.
क्योंकि हमें भूतकाल भूत बनकर परेशान करता रहता है।
Because our past continues to come to us again and again like a ghost.
जिस कारण हम औरों की गलतियों को याद करते रहते हैं।
Which is why we continue to remember others' weaknesses.
और उनकी अच्छी बातें सहज रीति भूल जाते हैं।
And then we also forget what are their good points.
शिव बाबा ने बताया है, सभी मनुष्य संपूर्ण नहीं हैं।
Baba has explained that not any one person is perfect.
सब में कुछ न कुछ कमियां हैं।
Each one has some weakness or the other.
वर्तमान काल को सफल करने के लिए शिव बाबा ने फुल स्टॉप की विधि बताई है।
So how to make the present time successful, useful? Baba has given us the method of applying the full stop.
उसका उपयोग अच्छी रीति करना है।
And so we have to apply that method now in a good way.
और दूसरों के जीवन की अच्छाइयों को ही देखना है।
And so we have to see the goodness in others.
इससे पर चिंतन कम हो जाएगा।
And because of this, then our gossiping will stop.
देखने में आता है हमारा बहुत सारा समय समस्याओं के समाधान में ही नष्ट हो जाता है।
It has been seen that a lot of our time is spent on actually just destroying the obstacles that come to us.
जिस कारण भविष्य के लिए जितना सफल करना चाहिए उतना नहीं कर पाते।
Which is why we cannot make good use or successful use of the future.
कई चीजों या व्यवहार में हमारा धन फालतू खर्च होता है।
And so our wealth is wasted on many things.
जब तक उसकी बचत नहीं करेंगे, तब तक भविष्य के लिए धन को सफल नहीं कर सकेंगे।
So until and unless we try and save and economize, then we cannot make our future successful.
देवी परिवार के कई भाई बहनें अपने वसीयत नामे में बहुत करके यही लिखवाते हैं।
So many members of the Brahmin family write this in their will.
कि उनके धन को उनके वारिसों में कैसे बांटा जाए।
That how their wealth should be distributed to all the heirs.
परंतु यह धन भविष्य के जन्मों में कैसे काम आए?
But how will this wealth be used in the next birth?
इसके बारे में कोई प्रबंध नहीं करते।
They don't think of this or take care of this.
देवी परिवार की तीन आत्माओं ने अपने धन को कैसे सफल किया?
So how three souls of the Brahmin family use their wealth in a fruitful way?
सभी भाई बहनों की जानकारी के लिए।
So for everyone's information.
मैं वे प्रसंग यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
So for this, I'm sharing with you three incidents.
पहला प्रसंग सन 1962 का है।
First incident took place in 1962.
मुंबई में वाटरलू मेंशन सेंटर पर राधी नाम की एक माता, सिंधी बुजुर्ग माता आती थी।
So Waterloo Mansion Center in Mumbai, there was a mother called Radhi Ma, Radhi Mata, and she used to visit the center.
वह बाल विधवा थी।
She was widowed quite young.
उसके पास इतना धन नहीं था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी।
She didn't have that much wealth, nor was she that educated.
सेंटर पर आकर सेवा करती थी।
She used to come on the center and do seva.
उनकी धारणाएं बहुत अच्छी थी।
Her dharana was very good.
भविष्य प्रलब्ध बनाने के लिए उसने अपने वसीयत नामे में।
So in order to make her future fruitful, she had made a will of her wealth.
और हमसे लिखवाया कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा धन।
And she made me write that after her dying, all her wealth.
शिव बाबा के यज्ञ में स्वाहा हो जाए।
Should be surrendered, sacrificed into Baba's yagya.
उसके पास लगभग 1200 या 1500 रुपए थे।
She had approximately 1200 to 1500 rupees.
और पहनने के कपड़े थे।
And a few clothes to wear.
थोड़े समय के बाद उसका शरीर छूट गया।
After some time, she left her body.
उस जमाने में ऐसे शरीर छोड़ने वाले दैवी परिवार के सदस्यों को
At that time, those who left the body in the Brahmin family
संदेशी के तन द्वारा साकार लोक में मिलने के लिए बाबा भेजते थे।
So Baba would send that soul into the Brahmin family again through a trance messenger. So a trance messenger would bring this soul into the Brahmin family and they would talk to the family.
तो सेंटर पर उनके निमित्त भोग लगाया गया।
So at the center, bhog was offered in her name.
और श्री बाबा ने उस आत्मा को संदेशी के तन में भेजा।
And Shiv Baba sent that soul, Radhima soul, in the trance messenger's body after offering bhog.
तो मैंने उनसे पूछा, राधिमाता, आपका जन्म कहाँ होने वाला है?
So I asked Radhima, Radhima, where are you going to be taking birth?
राधिमाता ने जवाब दिया, बाबा ने कहा था, तुम्हारा जन्म बहुत बड़े राजाई परिवार में होने वाला है।
And so राधिमाता said that your birth is going to take place. At a very wealthy royal king's place.
Yes. अभी से ही तेरे स्वागत के लिए उस परिवार में बहुत तैयारियां हो रही हैं।
And even now they're ready to welcome you and they're preparing everything for you in a very royal way.
मैंने पूछा, आपने तन मन से इतनी सेवा तो नहीं की और धन भी इतना नहीं था।
So I asked Radhi Mata that you didn't do that much seva with your mind, body or wealth and nor did you have a lot of wealth to give.
तो आप सब जो आप सफल कर सको फिर आपको ऐसे ही राजाई परिवार में जन्म का सौभाग्य कैसे मिला?
So you didn't have that much to put to use, to good use, but still why is it that Baba has put you into this royal family?
Radhi Mata ne jawab diya.
Radhi Mata responded.
मैंने भी यही प्रश्न शिव बाबा से पूछा था।
I too asked Shiv Baba this question.
तो बाबा ने समझाया।
So Baba explained to me.
कि तूने 100% धन सफल किया।
That you have made 100% good use of your wealth.
और नष्टो मोह की परीक्षा में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त की।
And that you have attained extreme elevated success. In becoming detached.
मैंने उनसे पूछा, आपका जन्म कहाँ होने वाला है?
So I asked her, where are you going to take birth?
क्या बाबा ने आपको बताया है?
Has Baba told you this already?
उन्होंने कहा।
She said.
जब मैं नीचे आ रही थी, तो शिव बाबा ने मुझे कहा।
When I was coming down, then Shiv Baba told me.
कि तुम्हें नीचे रमेश बच्चा मिलेगा।
That you will find Ramesh Bachcha down below.
और तुम्हारे जन्म के बारे में पूछेगा।
And he will ask you about your next birth.
मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद नहीं करता हूँ।
I am not going to lock your intellect.
तुम्हारा जन्म कहाँ होने वाला है इसकी स्मृति तुम्हें रहेगी।
You will be aware of where you will be taking birth.
अगर बताना चाहो तो बता भी सकती हो।
And if you want, then you can tell him.
मैंने बाबा से सवाल पूछा, क्या मैं रमेश भाई को मेरा जन्म स्थान बताऊं?
So then Radhi Mata said she asked Baba, should I tell Ramesh bhai where is going to be my next home?
Baba ne kaha, aap poochti ho to main bata deta hoon.
So then Baba said, since you are now asking me, I will tell you.
Ki yeh nahi batana chahiye.
That we should not tell this.
Kyunki yeh drama, yeh srishti rupi drama real hai.
Because this world cycle is very, world drama cycle is very real.
तब मेरे प्रश्न के उत्तर में राधे माता ने यही कहा, ड्रामा रियल है।
So that's why in response to my question, Radhi Mata said that this drama is real. In other words, it's actually going on, so we shouldn't interfere with it.
इसलिए मैं आपको अपने जन्म स्थान नहीं बता सकती।
So this is why I cannot tell you my place of birth.
परंतु मेरी प्रारब्ध अर्थात राजाई परिवार का जन्म अवश्य है।
But my birth in the royal family is fixed.
इस प्रकार धन की परीक्षा में अर्थात नष्टो मोह
In this way, in the test of attachment and the test of wealth,
और देह के संबंधों के बंधन से मुक्त होकर
and becoming free from all the bodily relations,
श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करने में
to make the future
elevated
and firm,
राधि माता जैसी बाल विधवा सफल हुई।
That's why Radhi Mata became very successful.
उन्हीं दिनों उसी वाटरलू मेंशन सेंटर पर यज्ञ का एक पुराना परिवार भ्राता गिरधारी लाल.
At the same time in those days at Waterloo Mansion Center, there was another brother, another family, but another brother by the name of Girdhari Lal who was coming.
और सीता माता आते थे.
And his wife Sita Mata.
यह युगल रूप में शुरू में समर्पित हुए थे.
They were a couple who were surrendered in the yagya.
परंतु बाद में कई सामाजिक प्रश्नों के कारण गृहस्थ व्यवहार में वापस चले गए.
But because of some whatever social situations, they had to then go back into the world.
और धंधे आदि में बहुत धन कमाया.
And in terms of their business, they earned a lot of wealth, became very rich.
मैंने कई बार उनको अपना तन मन धन सफल करने के लिए कहा था.
I had told them many times to put to good use their mind, body and wealth.
उनको माउंट आबू का निमंत्रण भी दिया था.
I had also given them the invitation to Mount Abu.
परंतु अपने धंधे के कारण उनको फुर्सत नहीं मिलती थी.
But because of their business, they didn't have any time.
फिर उनका शरीर छूट गया.
And then he left his body.
परिवार ने उनकी याद में भोग लगवाया.
And so the family offered bhog in his name.
शिव बाबा ने उनकी आत्मा को संदेशी कीर्तन में भेजा.
And Shiv Baba sent his soul also through the body of the trans messenger.
सामने उनके रिश्तेदार बैठे थे.
Opposite him were all his relatives sitting there.
और मैं थोड़ी दूर कोने में बैठा था.
And I was sitting in the corner, a little far away.
उनकी आत्मा ने चारों दृष्टि दी.
And his soul gave drishti all around the room.
और मुझे आगे बुलाया.
And he noticed me and called me forward.
उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं था.
At that time there were no tape recorders.
ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजता था.
There was a record playing in the gramophone.
गिरधारी की आत्मा ने रिकॉर्ड बजाने वाली बहन को कहा.
So the soul of Girdhari told the sister who was playing the record.
क्षमा करो मेरी गलती को, यह गीत दो बार बजाओ.
Excuse me for my mistake, but please play the song twice.
फिर दोनों हाथों से क्षमा मांगने के भाव से मुझे दृष्टि देता रहा और रोता रहा.
And then he folded his hands towards me and gave me drishti and continued to cry.
उसकी आंखों से अर्थात संदेशी की स्थूल आंखों से.
So through his eyes, but which was obvious through the eyes of the trans messenger.
पश्चाताप की अश्रुधारा 6 मिनट तक बहती रही.
There were tears of repentance flowing for 6 minutes from his eyes.
मैंने पूछा, गिरधारी लाल आप रोते क्यों हो?
I asked Girdhari Lal, why are you crying?
उसने कहा, रमेश भाई मुझे रोने दो.
He said, Ramesh bhai, let me cry.
मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ.
I have come to ask for forgiveness.
जब मैं सूक्ष्म तन में बाबा के पास गया.
When I went to the subtle regions to Baba.
तब मैंने बाबा से पूछा.
Then I asked Baba.
आप मुझे भी श्रेष्ठ भाग्यवान परिवार में जन्म देंगे ना?
That you will send me also to a very elevated family, right?
शिव बाबा ने मुझसे पूछा.
Shiv Baba asked me.
मैं तुमको इतना श्रेष्ठ भाग्य क्यों दूं?
Baba asked me, why should I give you such an elevated status?
तो मैंने कहा, एक साधारण माता राधी माता को आपने रॉयल परिवार में जन्म दिया.
So this Girdhar Lal said to Baba that, well, for Radhi Mata, you gave her such a royal family to go to.
मैं तो करोड़पति था.
And I am a millionaire.
तो मुझे तो श्रेष्ठ भाग्य मिलना चाहिए.
So I should also receive a very high status.
तब शिव बाबा ने कहा,
high fortune. So Shiv Baba said,
भविष्य का जन्म तुम करोड़पति थे इस आधार पर नहीं बनेगा.
So Baba said, your future birth will not be based on the fact that you were a millionaire.
बल्कि तुमने कितना सफल किया उस आधार पर बनेगा.
But it will be based on what you have put to good use in the future, or you had put to good use.
अभी तो तेरे धन के मालिक तेरे बच्चे बन गए हैं.
Now your children are the masters of your wealth.
तो मैं उस धन का फल तुझे कैसे दूं?
So how can I give you the fruit of that wealth?
जो धन बाबा के भंडारे में जमा ही नहीं हुआ.
If that wealth has not even been deposited into Baba's bhandara.
रमेश बच्चे के द्वारा मैंने तुमको बहुत बार इशारा किया.
I had given you many signals through Ramesh Bhai.
कि अपने तन मन धन को सफल करो.
That you must put to good use your mind, body and wealth.
परंतु तुम सफल नहीं कर पाए.
But you were not able to do that.
जो भी थोड़ा बहुत भाग्य बनाया है.
So whatever little fortune you have made.
उसके आधार पर साधारण परिवार में जन्म मिलेगा.
You will receive a birth in an ordinary family in the next birth, next life.
तब गिरधारी लाल ने शिव बाबा को कहा, बाबा मुझे नीचे भेजो संदेशी के तन में.
So that's when Girdhari Lal said to Shiv Baba, please send me down into the body of the trans messenger.
मैं आपसे माफी रमेश के द्वारा ही मांगूंगा.
I will ask for forgiveness through Ramesh.
क्योंकि आपने रमेश के द्वारा ही मुझे सावधानी दी थी.
Because you were the one who gave me the caution through Ramesh.
मैं अपने बच्चे को भी कहकर आता हूँ कि मेरे पीछे धन को थोड़ा सफल करें.
And I will go and tell my children to also put to good use my wealth.
बाबा ने कहा, भले जाओ.
Baba said, okay, you may go.
परंतु अभी अगर आपके बच्चे आपके कहने पर धन सफल करेंगे.
But if your children now put to good use in the yagya your wealth.
तो भी आपका जन्म साधारण घर में निश्चित हो गया है.
But your birth is already destined for that ordinary family.
और बच्चों द्वारा सफल किए गए धन का प्रारब्ध.
And the fortune of the wealth that your children will deposit.
आपको आगे चलकर ही मिल पाएगा, अभी नहीं.
You will get it much later, not this time now.
इतना कहकर उन्होंने अपने बच्चों को कहा, मेरे पीछे से मेरा धन सफल करना.
And so he said to his children, please after me, make good use of this money by donating it.
और मुझे कहा, रमेश भाई, मेरी ये कहानी सबको बताना.
And he said, Ramesh bhai, please, you must share this story of mine with everyone.
कि मैं कैसे करोड़पति से रोड़पति बन गया.
That how I was a करोड़पति, that is a millionaire, and became a roadpati, which means now living on the road, meaning having nothing now.
यह भी कहा, सबको संदेश देना.
And he also said, give this message to others.
कि सब अपने तन मन धन को सफल करें.
That you must put to good use your mind, body and wealth.
और राधी माता जैसे रोडपति से करोड़पति बने.
And like राधी माता, that she should become a करोड़पति from रोडपति, which means she will become a millionaire from a road, living on the road, like not having much.
ऐसे ही एक तीसरी आत्मा थी जो सेंटर पर आती थी.
So too, there was another third soul who was coming to the center.
उनका भी अपना धंधा था, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था.
And he too had his own business, and the wife had left her body.
और बच्चे भी नहीं थे.
And he didn't have any children.
कई बार हमें कहते थे.
Many times he would tell us.
मुझे अपना वसीयत नामा लिखवाना है.
That I want to write my will.
और मेरा जो भी धन है उसे सफल करना है.
That I want to put my wealth to good use.
परंतु कुछ कर नहीं पाए.
But he was not able to do it.
और अचानक ही सड़क दुर्घटना में उनका शरीर छूट गया.
And then he had an accident on the road.
बाद में उनकी आत्मा को भी संदेश के तन में बाबा ने भेजा.
So Baba sent his soul also through the body of the trans messenger.
और आकर हम सब से मिले.
And he came and met all of us.
उसने भी बाबा को कहा, बाबा.
He said, Baba.
मुझे संदेश के तन में नीचे भेजो.
He also had said, send me down through the body of the trans messenger down below.
वहाँ रमेश भाई बैठे होंगे.
Ramesh bhai must be sitting there.
उनको मैं कहूंगा, मेरा धन पूरा ही बाबा के भंडारे में सफल करना.
And I will tell him that put all my wealth into Baba's bhandara.
और कागज के ऊपर साइन करके आऊंगा.
And I will go down and I will sign the paper and come back.
तब शिव बाबा ने कहा.
So then Shiv Baba said.
कि लौकिक और ईश्वरीय दोनों ही कानून इस बात को नहीं मानेंगे.
That neither the laukik nor alaukik law will accept this.
कि अभी तुम ऐसे लिखकर और हस्ताक्षर करके आओ.
That you go and that you sign now, because he's dead, right? So how can he go and sign? So no laukik nor alaukik governments will accept this.
ईश्वरीय कानून तो यही है कि तुमने जीते जी जितना सफल किया.
So the ईश्वरीय law, godly law is how much have you put to good use whilst you are alive.
उसके आधार पर ही भाग्य बनेगा.
On the basis of that you will get your fortune.
इस प्रकार उस भाई ने भी हमको यही शिक्षा दी.
So in the same way, the brother also gave us the same teaching, same lesson.
कि जीते जी अपना भाग्य बना सकते हो.
That make your fortune whilst you are alive.
ओम शांति.
ओम शांति.